Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कुछ दिनों पहले हमारे पास एक मेल आया था जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि एक बिल्डिंग बन रही है और उसमें मुझे भी एक फ्लैट लेने की बड़ी दिली तमन्ना है। अब तक मैं किराए के मकान में रहता हूँ और अब मैं जीवन भर की मेरी जो जमा पूंजी है, मैं चाहता हूँ कि एक अपना घर हो, एक अपना फ्लैट हो। मैं क्या करूँ, क्योंकि बहुत सारे जो बिल्डिंग है उसके फ्लैट बुक हो चुके हैं, थोड़ी सी फ्लैट्स रह चुके हैं और उसके लिए भी बहुत मारामारी हो रही है। क्या मैं कुछ योग का अभ्यास कर सकता हूँ? तो भ्राता जी की तरफ से हम लोगों ने उनको मेल किया था कि भाई आप 21 डेज का अच्छा योग का अभ्यास करें और एक सुंदर विजन बनाएं जिसकी लगातार हम चर्चा करते हैं, आप सब जानते हैं। उन्होंने बहुत दिल से 21 डेज योग का अभ्यास किया, खूब भगवान से कहा कि भगवान ये फ्लैट मुझे अवश्य मिलनी ही चाहिए ताकि मैं अपने आगे के जीवन को बहुत सुकून से जी सकूँ, क्योंकि मेरी ये बहुत दिली ख्वाहिश है। लेकिन योग पूरा हुआ उनका, मेडिटेशन भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन फ्लैट उन्हें नहीं मिल पाया, फ्लैट किसी और को अलॉट कर दिया गया। जब ये बात उनके सामने आई तो उन्हें बहुत दुख हुआ और बहुत निराश हुए। भगवान को भी उन्होंने कहा कि क्या भगवान, मैंने इतना अच्छा योग किया लेकिन कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई, और एक निराशा का भाव आ गया कि योग वोग से कुछ होता नहीं है, ये सब ऐसे ही कहने की बातें हैं। लेकिन एक मास के बाद उन्हें किसी ने बताया कि जिस बिल्डिंग में आप फ्लैट बुक करना चाहते थे, अपने जीवन भर की कमाई लगाना चाहते थे, तो कुछ कमज़ोर मटेरियल्स यूज होने के कारण वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही ढह गई है। जब उन्हें ये समाचार मिला तो उन्हें लगा कि अरे, यदि मैंने वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता तो शायद मेरी पूरी जीवन भर की कमाई वहाँ फंस गई होती और मैं तो दर बदर हो गया होता। और उन्होंने भगवान को दिल से शुक्रिया अदा किया कि भगवान आपने जो किया मेरे भले के लिए किया। उनकी आंखों में आंसू थे और वो निराश भी थे कि मैंने भगवान को खामखा बहुत भला बुरा कहा और उन्होंने उनसे सॉरी भी की, ऐसा वो हमें फ़ोन पे बता रहे थे। मित्रों, जहाँ तक मैंने योग को समझा है, मेडिटेशन को समझा है या भगवान को समझा है, तो ऐसा लगता है कि परमात्मा कल्याणकारी हैं। और सचमुच हम जब मेडिटेशन करते हैं तब भी एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होता है, उसके माध्यम से हम जिस कामना को लेकर के योग कर रहे हैं, कई बार ऐसा नहीं होता कि वो सफल हो, लेकिन ये जरूर होता है कि हमारे हित में जो बात होती है वो होता है। इसे शायद हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार हम छोटे बच्चे की तरह आतुर हो जाते हैं कि ये हुआ नहीं तो ये सब चीज़ें छोड़ो, लेकिन इस अनुभव से आपको ये विश्वास जरूर हो जाना चाहिए कि ईश्वर जो करते हैं हमारे हित में करते हैं, और मेडिटेशन भी जब हम करते हैं तो जो भी होना होता है हमारे हित में होता है। आवश्यकता इसे बहुत गहराई से समझने की है। ऐसे सुंदर अनुभव के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं प्राता जी का। प्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक।
एक बड़ा ही प्यारा सा अनुभव था प्राता जी, तो लगा कि हमारे सभी दर्शक भी ऐसे योग के प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन कई बार निराशा हाथ लगती है तो सोचते हैं कि पता नहीं सफल होंगे या नहीं होंगे।
हाँ, है क्या कि मनुष्य की दृष्टि बहुत लिमिटेड
जी,
कहीं ना कहीं स्वार्थ से भरी हुई, और परमात्मा की दृष्टि, वैसे भी वो हमारा परमपिता और कल्याणकारी है, बड़ी अनलिमिटेड, भविष्य को देखते हुए सब कुछ वो करते हैं। लेकिन अगर मनुष्य भूल जाता है कि वो हमारा परमपिता परम कल्याणकारी है, वो सब कुछ अच्छा करता है
जी,
तो ये सब बातें होती हैं। और खैर, भगवान को बुरा भला कहना ये भी तो अधिकार है, वो पिता है, कह दिया तो नो प्रॉब्लम, ही डजंट माइंड इट।
लेकिन वो सॉरी कह रहे थे कि भगवान मैंने आपको बहुत नाराजगी जाहिर की, मुझे सॉरी।
तुरंत वो क्षमा भी कर देता, कोई बात नहीं बच्चे, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य किस स्थिति में जीता है, वो तत्काल कुछ परिणाम देखना चाहता है, वो दूर तक की नहीं सोच सकता और वो दूर तक की देखता है, सोचता है। इसलिए अगर हम ये भावना अपने अंदर बैठा दें कि मेरे साथ जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, हम ये बात बार बार लोगों को कहते हैं कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, बड़ी डीप फिलोसॉफी है ये मन की। जो संकल्प हम बार बार कर रहे हैं उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं, प्रकृति से मिक्सअप हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, प्रकृति और हमारे वाइब्रेशंस के बीच में हमेशा एक रिएक्शन हो रहा है और वही चीज़ें रिटर्न हो रही हैं हमें, तो ये सिंपल भाषा में इस तरह समझ लें कि जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। ये आजकल के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत आवश्यक, बिजनेसमैन के लिए भी, और सबके लिए जो अपने भविष्य के बारे में चिंता करते, अब का भविष्य भी, अगला 5 मिनट, अगला 10 मिनट, आज रात तक बार बार कोई विचार निगेटिव आ रहा है तो समझ ले निगेटिव क्रिएट हो रहा है, वही मिलेगा हमें
जी।
इस सत्य को जानकर हम वो सोचें जो हम चाहते हैं, अच्छे से अच्छा सोचें। विद्यार्थियों के लिए खास एग्जाम के दिन आ गए हैं, एकदम अच्छा सोचें वो, बस मेरा एकदम फर्स्ट क्लास होगा और इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे, एकदम उमंग उत्साह से मन को भर दें, तो ये जो मन की एनर्जी है ये उनके रिजल्ट को प्रभावित करने लगेगी।
बिल्कुल, लगातार बेहतर जी हमारी इस पे चर्चा होती रही है और प्रकाश डालते रहते हैं आपकी, जो सोचेंगे वही होगा, इसीलिए हम अच्छा अच्छा सोचें। लेकिन ये जो एक केस हमने लिया आज, जो अनुभव हमारे पास आया, ये लगातार अच्छा सोच रहे थे और पूरा जोर इन्होंने लगा दिया था कि हाँ भाई ऐसा ही हो, तो ये एक ऊपर वाली बात नहीं हो जाती है कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपनी तरफ से फुल फोर्स में किया, नहीं रिजल्ट आया तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा उसका और अच्छा देने वाले हैं, शायद ये भाव हमारे अंदर नहीं आ पाता।
हाँ, इसमें यही है कि इनकी एनर्जी तो काम कर ही रही थी
जी।
लेकिन ऊपर से जो एक सुंदर एनर्जी और आ रही थी वो इनकी एनर्जी को वापिस कर रही थी, और बस वो हो रहा था जो वो चाहते थे कि इनको नहीं मिलना था, इसमें इनका कल्याण था। तो एनर्जी, अब क्योंकि ये शिव बाबा से जुड़ गए हैं तो उसकी एनर्जी भी काम करती रहती
जो कल्याणकारी
होती है। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके साथ नहीं करेगी, लेकिन जो उनसे जुड़ गए हैं उनकी कल्याणकारी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो बहुत पावरफुल है, वो काम करते रहते।
तो बेटा जी यहाँ फिर थोड़ा सा कैसे इस चीज को समझें, क्योंकि मान लीजिए मैं किसी एक लक्ष्य को लेके लगातार प्रयास कर रहा हूँ और उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है, शायद परमात्मा कुछ और चाहते हैं या कुछ और भला होने वाला है, उस चीज को कैसे समझा जाए फिर, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति फिर निराश हो जाता है अभ्यास करते।
दो चार संकल्प मनुष्य को अपने सामने रखने चाहिए
जी।
मैं भी जो रखता हूँ कि शायद दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम फॉर दैट, उचित समय नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा छोड़ दो। जब मनुष्य को एक्सपेक्टेड परिणाम न मिले भिन्न भिन्न कार्यों में, तो तब मनुष्य को एक राइट टाइम की इंतजार करनी चाहिए, निराश न होना चाहिए। और दूसरा संकल्प, प्रभु इच्छा नहीं है, वो कुछ और करना कराना चाहता है। ये दो संकल्प मैं भी अपने पास रखता हूँ और बहुत अच्छा रहता है, इसे अपना मन भी शांत रहता है और देखने में ये आता है फिर एक राइट टाइम पर एक बहुत सुंदर चीज हमें मिल जाती है, जैसे इनके साथ हुआ, फिर हम उसको धन्यवाद देते हैं कि वाह तुमने हमें बचा लिया, या तुमने हमारे लिए कितना अच्छा काम किया, तुम न होते तो ये सब कुछ नष्ट हो जाता। तो ये दो चीज़ें अगर हम सदा याद रखें तो बहुत अच्छा होगा, निराशा की बात नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे प्रयोग करने के बाद भी ये देखा जाता है कि सब कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुकूल नहीं होता है। सब कुछ अगर होने लगे तो फिर तो संसार का रूप ही बदल जाए, इसलिए कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना होता है, कुछ चीज़ों को कुछ समय के लिए जरा पोस्टपोन कर दें, छोड़ दें, ठीक हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है, बार बार वैसा प्रयास करने के बाद भी जब नहीं होता तो हमें फाइनली उस चीज़ को कैंसिल भी कर देना चाहिए कि शायद ये है नहीं, अब भविष्य में ये होगी नहीं, जिसको लोग भाग्य कहते हैं, नियति कहते हैं, वो भी कुछ चीज़ है। तो अपने मन को इस तरह से शांत कर लेना चाहिए।
बिल्कुल, तो एक जो आप राइट टाइम की बात कई बार करते हैं ब्रदर जी, तो वो राइट टाइम कब आएगा हम ये भी तो नहीं जानते, और अपना प्रयास और पुरुषार्थ भी हमें नहीं छोड़ना होता ये भी कहा जाता है, तो फिर कितने समय तक इंतजार करें या कितना गैप दे करके फिर से अपना अभ्यास शुरू करें।
बिल्कुल, ये बात तो हर व्यक्ति सोचेगा ही कि राइट टाइम कब आएगा
जी।
देखिए, हमारे वर्तमान को हमारा पास्ट भी अफेक्ट कर रहा है और हमारा फ्यूचर भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये दो बात बड़ी डीप हैं, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है ये भी। न जाने पास्ट का कौन सा अच्छा कर्म या बुरा कर्म हमारे वर्तमान पर अपना प्रभाव डाल रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है वर्तमान में मनुष्य बहुत अच्छा करते हुए भी पास्ट के उस इफेक्ट के कारण मनचाही सफलता को नहीं प्राप्त करता, और कई बार उसका फ्यूचर उसे अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे मैं एक सुंदर घटना सुनाऊं। एक लड़के ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ था मुझे आईएएस बनना है, और उस तरह की वो तैयारी भी कर रहा था। एक बार उसने कंपटीशन दिया, नहीं हुआ। फिर उसने बैंक में क्लरिकल जॉब के लिए एग्जाम हो रहे थे वो दिया, वो भी नहीं हुआ। अब उसके मन में ये होने लगा, यार तुम क्लर्क भी नहीं बन सका, कलेक्टर क्या बनेगा। लोग भी उसे बोलने लगे, चला था कलेक्टर बनने, क्लरिकल जॉब भी नहीं मिल पाई। लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो एक्सेप्ट किया हुआ था कि इसे आईएएस कराना है। उसने फिर प्रयास किया, नहीं हुआ, फिर प्रयास किया और क्लियर हो गया। तो ये क्योंकि फ्यूचर उसका आईएएस बनने का था, उसे कलेक्टर बनना था, तो जो वर्तमान को अफेक्ट कर रहा था, यहाँ फेल करा रहा था, हर चीज़ में हर कदम पर फेलियर वो हो रहा था। और जब एक राइट टाइम आया तो बस वो गेट ओपन हो गया। तो ये मनुष्य को अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ रखना चाहिए, और जैसा मैंने कहा ये दो चीज़ें ऐसी गहरी हैं जिनका किसी मनुष्य को पता नहीं होता है। परमात्म शक्तियों पर भी विश्वास रखना चाहिए, और अगर कोई मनचाही चीज़ नहीं मिलती तो ये भी मान लेना चाहिए कि इसमें कल्याण नहीं है हमारा, दूसरे में कल्याण है। और अगर हमें उसकी बहुत इच्छा ही है तो कुछ समय के बाद हम उसके लिए फिर प्रयास करेंगे और वो हमें मिल जाएगी।
बिल्कुल दत्ता जी, शायद हम लोग पहली चर्चा कर चुके हैं, क्या एक ऐसी स्थिति हमारी हो सकती है मेडिटेशन से कि मुझे ये क्लियर हो जाए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या मेरा फील्ड क्या है, कौन सा मेरा फील्ड नहीं है, कहाँ मैं करूँ तो मुझे सफलता मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी? क्या मेडिटेशन से ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल क्लियर विजन हमारे सामने आ जाए?
क्वेश्चन तो बहुत डीप है ये। हमारे पास जब से विदेशी आने लगे थे तो वो ये क्वेश्चन बहुत करते थे कि क्या हम समझ सकते हैं, व्हाट इज माय रोल इन दिस वर्ल्ड ड्रामा, तो मैं उधर ही चलूँ ना जो मेरा रोल है,
जी जी।
उसके इधर उधर जाके टाइम वेस्ट क्यों करूँ, ये संभव है, लेकिन इसके लिए बुद्धि और मन की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत अच्छा योग अभ्यास होना चाहिए, मन की प्योरिटी बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, ये दोनों जब राजयोग से बढ़ती जाएंगी तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, भविष्य का आभास भी होता जाएगा, किसी को स्वप्नों में वो बात आती जाएंगी, किसी को योग अभ्यास में बैठे बैठे वो बात टच होती जाएंगी, ये संभव है, परंतु हर एक को नहीं। योग अभ्यास 6-8 घंटे रोज हो, और ये सब हमारे दर्शक जानते हैं कि ये अभ्यास बैठकर नहीं, कुछ बैठकर और कुछ कर्मों में किया जाए, ताकि माइंड में ऊँचे विचार बनते जाएँ, बुद्धि क्लीन होती जाए, हमारी इनर प्योरिटी बढ़ती जाए, तो ये सब चीज़ हमारे सामने क्लियर होती जाएगी। फिर ये टाइम वेस्ट नहीं होगा कि वो काम किया सफल, उधर गए असफल, इधर गए, फिर उधर ही जाएंगे जो हमारा फ्यूचर है।
क्योंकि कई बार यही होता है ब्रता जी कि एक बार कई बार बहुत आगे तक निकल जाते हैं, फिर लगता है कि अरे हम कहीं गलत आ गए, और फिर पीछे मुड़ते हैं, फिर कहीं आगे जाते हैं, और फिर ये मतलब कईयों के साथ ये होता है कि जहाँ भी पैर रखा वहाँ पे असफलता असफलता असफलता, तो समझ में नहीं आता कि किस रास्ते पे जाएं, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके समक्ष रखा था।
इस असफलता के बहुत सारे कारण हैं जो कुछ ऐसे सूक्ष्म हैं कि अगर हम वो अपने युवकों को बता देते हैं तो हो सकता है उनके मन में कहीं निराशा भी आ जाए, इसलिए हम जरा उनको खोलते नहीं है उस तरह से, ताकि उन्हें प्रयास करते रहने दें, और वो कुछ गेन तो करेंगे ही। मान लो आईएएस का ही दे रहे हैं कोई, तो अगर वो 3 बार भी असफल होते हैं तो कुछ तो सीखेंगे, कुछ अनुभव तो प्राप्त करेंगे, जो अनुभव उन्हें और कहीं काम आएगा, और उनके मन में एक उमंग उत्साह भरा रहेगा। फिर भी एक छोटी सी चीज़ कि मनुष्य को अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आजकल के युवक जिन राहों पर चल रहे हैं, एक अच्छे युवक को जिसको कुछ महान कार्य करने हैं उन राहों पर नहीं जाना चाहिए, अपनी प्योरिटी को किसी भी तरह नष्ट नहीं करना चाहिए, अपनी मन की एकाग्रता को भंग नहीं कर देना चाहिए। युवक समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? नेट पर बहुत बैठकर मोबाइल पर सारा दिन लगे रहने वाले युवक सफल कम हो पाते हैं। इन चीज़ों का यदि ध्यान रखेंगे तो मनचाही सफलता प्राप्त होगी, और फिर एक ही फील्ड में चलेंगे, जो लक्ष्य है वही आएगा ख्यालों में, उधर ही चलेंगे कदम और वो लक्ष्य सहज प्राप्त हो जाएगा।
बिल्कुल दत्ता जी, जैसे बच्चे 10th में या 12th में पहुंच रहे हैं, यहाँ से उन्हें एक रास्ता चुनना होता है, पेरेंट्स भी उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अभी इन्हें किस रास्ते पे डालें। अब कई बार यहाँ बहुत उठापटक वाली स्थिति हो जाती है कि बच्चे की इच्छा कुछ और होती है, पेरेंट्स की इच्छा कुछ और होती है, उसकी क्षमताएं भी शायद कुछ और होती हैं, इस एज में यदि बच्चे हैं जहाँ एक करियर की बात आ रही है कि इस फील्ड पे इसे डालना है, वहाँ क्या सजेस्ट करेंगे?
देखिए, माँ बाप को अपने बच्चों की इच्छा और उनकी योग्यता को महत्व देना चाहिए। मान लो माँ बाप दोनों ही डॉक्टर हैं और वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, लेकिन उसकी रुचि कहीं और है और उसकी योग्यता भी कहीं और है, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, तो उसे उसी में जाने देना चाहिए। क्योंकि बिना इंटरेस्ट के अगर कोई फील्ड उसे दे दिया जाए तो एक तो उसके ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा, दूसरा वो उसे आधी इच्छा से पूर्ण करेगा ना, तो सफलता का मार्ग भी उसके लिए कठिन रहेगा। इसलिए माँ बाप को समझदारी से ये काम करना चाहिए। कई माँ बाप करते हैं, हमने देखा बच्चे, माँ बाप डॉक्टर हैं और बच्चा किसी और फील्ड में जा रहा है, वो उसको फिर ही छोड़ते हैं कि जिधर तुम अच्छी सफलता प्राप्त कर सको, जिधर तुम्हारा मन तुम्हें कह रहा है तुम उधर ही चलो, तो चलते हैं और बहुत अच्छा होता है।
दादा जी, कुछ मेल आए हमारे पास, उनके और लिए चलता हूँ। युवाओं की बात हो रही है तो पहला यूथ की तरफ से ही आया है। ये कहते हैं, ओम शांति, मैं 2 साल से सेंटर जा रही हूँ, शुरुआत में सब ठीक था पर धीरे धीरे घर वाले अब रोक टोक करने लगे हैं। मैं BCom और कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा योग भी अब थोड़ा सा डाउन हो गया है, 2 महीने से मैं सेवा केंद्र पर नहीं जा रही हूँ, मुझे बाबा का प्यार भी अब महसूस नहीं हो पा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए?
अब आप आजकल बुजुर्ग लोग ये सोचते हैं कि ये कहाँ अभी से सन्यासी बनने चल गई, उन्हें रियलिटी का पता नहीं होता, वो ये नहीं जानते कि ब्रह्मा कुमारियाँ किसी को सन्यासी नहीं बनाती, लेकिन वो तो प्योरिटी बढ़ाती हैं जीवन में, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, प्योरिटी इन बिहेवियर, लवफुल रिलेशनशिप, ये सिखाया जाता है। वो सोचते हैं ये शायद फिर कोई काम के नहीं रहेंगे, अभी उधर ये चल दिए हैं, तो ये गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए सबकी। और माँ बाप को वहाँ जाकर देख लेना चाहिए कि जहाँ हमारी लड़की लड़का जा रहा है वो कहीं गलत फील्ड तो नहीं है। देखिए, आजकल युवक गलत मार्ग पर कहीं जा रहे हैं, माँ बाप दुखी होते हैं, फिर उनके लिए तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो बच्चे अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें रोकने का भरसक प्रयास करते हैं कि बस पता नहीं हमारी बहुत बड़ी विजय होगी यदि हम इन्हें अच्छे मार्ग पे चलने से रोक दें, तो ये उनकी गलती है। माँ बाप को थोड़े बुद्धिमान होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो अपने बच्चों को ईश्वरीय मार्ग पे चलने से रोक रहे हैं, माना वो भी नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, वो भगवान को मानते नहीं और वो एक श्रेष्ठ समाज की रचना भी करना नहीं चाहते हैं, तो इनको लेकिन मैं कहूँगा ये घर में बैठकर थोड़ा योग अभ्यास किया करें, और अब क्योंकि डबल कोर्स ये कर रही हैं तो थोड़ा अपनी स्टडी पर भी ध्यान दें, लेकिन विशेष ध्यान इनको देना है कि माइंड की एकाग्रता इनकी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, माँ बाप उनकी भी एक अपनी इच्छा होती है, लेकिन बच्चों की इच्छा तो सर्वोपरि है ना, नहीं तो बच्चे गलत मार्ग अपनाते हैं जैसा आजकल हो रहा है। इसलिए इनको अपनी पढ़ाई पर अच्छा ध्यान देना चाहिए और जो ईश्वरीय महावाक्यों की किताबें हैं वो घर में रखनी चाहिए और एक रोज 10-15 मिनट उनको पढ़ लेंगे तो चित्त शांत रहेगा, एकाग्रता और अच्छी रहेगी, मन भटकेगा नहीं, पढ़ाई में भी अच्छा ध्यान लगेगा और सफलता बहुत अच्छी प्राप्त करेंगे।
जी प्रीता जी, एक जो बात है, जैसे पेरेंट्स हैं या घर के और बड़े बुजुर्ग हैं जिनके अंदर ये एक मान्यता है कि अभी इनकी उम्र पढ़ने की है, अभी इनकी उम्र ये ज्ञान ध्यान करने की या स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि यूथ के लिए ये जरूरी है ज्ञान ध्यान करना, स्पिरिचुअल पथ पे चलना, या 50-60 साल के बाद ये करना चाहिए?
आदि शंकराचार्य छोटी आयु में महान पथ पर अग्रसर हुए, संसार आज उनको पूजता है, मानता है। अभी का देख लीजिए स्वामी विवेकानंद, छोटी आयु थे युवक और बहुत बुद्धिमान, प्रसिद्ध वकील होते वो भी हाई कोर्ट के, लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअल मार्ग चुना, संसार को एक दिशा दी, तो लोग ये नहीं सोचते कि उन्होंने भी तो युवा काल में ही ये किया है। ऐसे बहुत सारे युवक हुए रामानुजाचार्य फेमस उस तत्कालीन, युवा काल से उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। ऐसे बहुत सारे युवक हैं जिन्होंने महान कार्य किए हैं और स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में भी जो बहुत अग्रसर आगे अग्रसर हुए हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा सच के बूढ़े तो स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकते, भले बूढ़े लोग मेरी बात बुरा ना माने, क्योंकि उनके संस्कार इतने पक जाते हैं, उनके अंदर इम्प्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके स्वभाव इतने इरिटेशन वाले हो जाते हैं, कि उनका ध्यान कहाँ लगता है।
वैसे भी कहते हैं कि वो राम की बजाय लाम कहने लगते हैं।
अगर युवा काल से ही मनुष्य कुछ अच्छी बात सीख लेता है, जैसा मैंने कहा ये स्पिरिचुअलिटी कोई संन्यास मार्ग नहीं है, मनुष्य को अच्छा ही सिखाने का मार्ग है। अगर छोटी आयु से ही मनुष्य बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी सीख लेता है तो वो अपने पूरे जीवन को एंजॉय करेगा। नहीं तो हमारे पास तो लाखों लोगों के आज समाचार आते हैं कि मनुष्य 50 साल के बाद इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच गया है, उसका मन इतना भटकने लगा है, उसके संस्कार इतने बिगड़ चुके हैं, वो अपने क्रोध को ही शांत नहीं कर पाता है, उसको इतनी बीमारियां हो गई हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए बुजुर्गों की ये मान्यता गलत है, उन्हें अपनी मान्यता बदलनी होगी। और जब जो ईश्वरीय मार्ग पर आ जाए, दैट इज गोल्डन पीरियड फॉर हिज और हर लाइफ। इसलिए युवकों को ही तो मैं कहूँगा कि अब संसार में एक स्पिरिचुअल क्रांति लानी है और भगवान को युवकों की जरूरत है। सब युवक तो नहीं कर पाते हम जानते हैं, पर भगवान के आह्वान पर थोड़े भी युवक आ रहे हैं, आ गए हैं और आएंगे, जो इस संसार को नई दिशा देंगे।
बिल्कुल प्रताप जी, जैसे ये यूथ हैं, अब मान लीजिए ये बहन हैं या ऐसे ही कोई कुमार आता है, अब इनकी कई बार ऐसी इच्छा होती है कि हम अपने घर वालों को भी कन्विंस कर लें, मम्मी पापा को कन्विंस कर लें, बड़ों को कन्विंस कर लें कि हम एक अच्छी जगह जा रहे हैं। वो कन्विंस नहीं होते, क्या कुछ ऐसा ये बताएं उन्हें कि बड़े भी कन्विंस हो जाएं और इनका रास्ता साफ हो जाए बिना किसी टकराव के।
बहुत लोगों बच्चों के माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की इच्छा को समझते हुए हमारे सेवा केंद्रों पे जाते हैं और जाके देखते हैं और फिर खुद भी जुड़ जाते हैं। सच्ची बात तो ये कि वो उनसे तीव्र गति से आगे बढ़ने लगते हैं ज्ञान, और वो अपने बच्चों को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं हमारी लड़की तो हमारी गुरु है, हमारी गुरु माँ है जिसने हमें प्रभु मार्ग पे लाया है। लेकिन बात यही है कि समझाने का तरीका, अपनी अच्छी बात को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने का तरीका सबको नहीं आता है। वो ये नहीं बता पाते कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वहाँ हमें क्या मिल रहा है। कई बच्चे माँ बाप से डरते हैं बचपन से ही, कई माँ बाप ने बच्चों को दबा के रखा है, वो उन्हें बोलने भी नहीं देते हैं, वो उनकी कोई बात सुनेंगे भी नहीं। ऐसे में ऐसे बड़े लोग अपना ही कल्याण कर रहे हैं क्योंकि वो प्रभु प्राप्ति से वंचित हो रहे हैं। इसलिए मैं इन युवकों को कहूँगा कि थोड़े में बताएं कि वहाँ परमात्मा ज्ञान दिया जाता है, जो ज्ञान स्वयं भगवान आकर दे रहे हैं, प्रभु मिलन का एक सहज मार्ग बताया जा रहा है, जो घर छोड़े बिना अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस प्रभु मिलन का आनंद लिया जा सकता है। वहाँ एक जीवन जीने की सुंदर कला सिखाई जा रही है कि कलयुग के इस घोर अंधकार में भी आप अपने जीवन को कैसे प्रकाशित रख सकते हो। वहाँ बहुत अच्छी चीजें सिखाई जा रही, कैसे खुश रहो, कैसे पॉजिटिव रहो। तो थोड़ा सा समझाएंगे, लेकिन स्वमान का अभ्यास करने के बाद, क्योंकि छोटों में कहीं कहीं थोड़ा छोटापन रहता है, ये बड़े हैं क्या कहेंगे। लेकिन आजकल हम तो देखते हैं बच्चे, मैं ये कहना अवश्य चाहता हूँ, है तो खराब बात, बच्चे जब बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप की पिटाई भी करने लगते हैं। तो मैं यही कहता हूँ अपनी पवित्र कन्याओं को, पवित्र कुमारों को, कि जो लोग गलत मार्ग पे चल रहे हैं वो तो देखो माँ बाप दादा दादी की पिटाई भी कर रहे हैं, तुम अच्छे मार्ग पर चल रहे हो, तुम अच्छे बोल बोल कर, उन्हें सम्मान देकर, उन्हें स्वमान देते हुए अपनी बात सुंदर शब्दों में कहो। तो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अच्छी बातों को ना समझे।
बिल्कुल बिल्कुल जी, बाकी सब बातें तो अच्छी लगती हैं जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि हाँ, यहाँ ज्ञान अच्छा दिया जा रहा है, योग अच्छा सिखाया जा रहा है, या ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात सिखाई जाती है। लेकिन जहाँ ब्रह्मचर्य की बात आती है कि ये शादी नहीं करेंगे, या जहाँ खान पान की बात आती है, वहाँ उन्हें लगता है कि नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और शायद इस कारण वो अवरोध पैदा करते हैं। तो इन दोनों बातों पे क्या कहेंगे?
देखिए, भोजन तो पवित्र ही होना चाहिए, मांसाहारी भोजन तो मनुष्य के जीवन में निगेटिविटी ही पैदा करता है। मांसाहारी भोजन खाना तो पाप खाना है, तो इसको तो हम नहीं कहेंगे। रही बात ब्रह्मचर्य की, वो ज्ञान लेने के बाद जिसकी इच्छा हो पालन करे, जिसकी इच्छा हो न पालन करे, ये हर एक की अपनी मर्जी पर रहता है। लेकिन पवित्र बनना ये किसी मनुष्य की बात नहीं है, ये तो इस समय भगवान की आज्ञा है, और वो कह रहे हैं कि मुझे ये युग बदलना है, अब ये हमारी बात थोड़ा ही है, ब्रह्मा कुमारियों की बात थोड़ा ही है। ब्रह्मा कुमारियाँ या हम कौन होते हैं वाला युग बदलने वाले? भगवान युग बदलने का कार्य कर रहा है और इस युग परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका पवित्रता की ही होगी, क्योंकि संसार में अपवित्रता, तामसिकता, तमोप्रधानता, एकदम हिंसा, ये सब बहुत बढ़ गया है। इसको रोकने के लिए, इसको परिवर्तित करने के लिए प्योरिटी ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इसलिए तो भगवान की आज्ञा है, और मैं तो ये भी कहूँगा कि जिनको पवित्र बनना है, जिनके अंदर पवित्रता के संस्कार हैं, बहुत आत्माएं देवकुल की हैं, उनके अंदर प्योरिटी के संस्कार हैं, वो तो बनेंगे ही। जिसको पवित्र बनना है वो तो अपना मार्ग चुन ही लेते हैं।
चलिए, बहुत बहुत सुंदर प्रकाश आपसे प्राप्त हुआ है भ्राता जी, और सचमुच बहुत एनर्जी मिल जाती है और सत्य लाइट भी मिलता है कि क्यों हमें पवित्रता का पालन करना है, और यहाँ आके वो सचमुच हमारे लिए सहज भी हो जाता है और हमारे लिए उन्नतिकारक भी है। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच एक नवीन पथ है तो कई बार विघ्न तो आते हैं, क्योंकि नए रास्ते पे यदि चलना हो, रास्ता निर्मित करना हो, तो कई बार हमें थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन सचमुच मंजिल बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये परमात्मा के भी नज़दीक हमें ले जाती है और साथ ही हमारा और संसार का भी कल्याण करती है। और जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहाँ से ही अंत करना चाहूँगा कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन असफलता हाथ लगती है तो हम सोचते हैं कि शायद हमारी पूरी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इच्छा भी हमारे साथ जुड़ी होती है और वो कल्याणकारी होती है हमारे संपूर्ण जीवन के लिए। इसीलिए किसी ने कहा है कि ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। बहुत ही गहरा वाक्य है मित्रों, इस पे हमें बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए, सतत प्रयास करते रहना चाहिए स्वयं पे और उस खुदा पर विश्वास रखते हुए। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।